ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ.
ತೋ ಆಜ್ಕೆ 31 ಜುಲೈ ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೇ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಹರಿವೋ. ಔರ್ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಖುಷಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಕೇವಲ 10 ದಿನ ಮೇ ಅಭಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆನೆ ವಾಲಿ ಹೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಡಿ ಹಿ ಆನಂದ ಕಿ, ಖುಷಿ ಕಿ, ಸಮಾಧಾನ ಕಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಜನ್ಮ ಲೇತೆ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ. ವೈಸೆ ದೇಖಾ ಜಾಯೆ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಜನ್ಮ ಲೇನೆ ಕಿ ಕೋಯಿ ಆವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಜರೂರತ್ ಹಿ ನಹೀ ಉನ್ಕೋ. ನಾ ಕೋಯಿ ಉನ್ಕಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೈ, ನಾ ಕೋಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೈ, ಸಬ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಹಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೋ ನಹೀ ಕರ್ತೆ ವೋ. ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಆನಂದ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಉನ್ಕೆ ಗೌಲೋಕ್ ಧಾಮ್ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಚೂರ್ ಮಾತ್ರಾ ಮೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ರಹತಾ ಹೈ. ಉನ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆ ಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತ ಜಿನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಾಮ ವಾಸನಾ ನಹೀ ಹೈ, ಜಿನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಲೋಭ ನಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ದ್ವೇಷ ನಹೀ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಝಗಡಾ ನಹೀ ಹೈ, ಐಸೆ ಪವಿತ್ರ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಜೊ ಉನ್ ಪರ್ ಪ್ರೇಮ ಕರತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ವೋ ವಹಾಂ ಪರ್ ಚಿರಂತನ್ ನಿವಾಸ ಕರತೆ ಹೈ. ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕಾ ಸಂಗ ಛೋಡ್ಕರ್ ಕೌನ್ ಆಯೆಗಾ ಯಹಾಂ ಪರ್? ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕೈಸೆ ಲೋಗ ರಹತೆ ಹೈ? ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲೋಗ ಝಗಡಾಲು ರಹತೆ ಹೈ, ದ್ವೇಷೀ ರಹತೆ ಹೈ, ಹಾಂ ಕಾಮ ವಾಸನಾ ಸೇ ಭರೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಹಮೇಶಾ ಶರೀರ ಭೋಗ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಕೈಸೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಕರೆ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಗುಸ್ಸಾ ಆತೆ ರಹತಾ ಹೈ, ಝಗಡಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಗುಸ್ಸೆ ಕೆ ಅಂದರ್. ಯಹಾಂ ಲೋಗ ಸಮಜತೆ ಕಿ ಹಮ್ ಶರೀರ ಹೈ, ಆತ್ಮಾ ನಹೀ ಹೈ, ವೋ ಶರೀರ ಕೆ ಮದ್ ಮೇ ಜೀತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ಕೋಯಿ ಸಮಜತಾ ಹೈ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ, ಕೋಯಿ ಸಮಜತಾ ಹೈ ಮೇ ಧನೀ ಹೂ, ಕೋಯಿ ಸಮಜತಾ ಹೈ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಹೂ, ಕೋಯಿ ಸಮಜತಾ ಹೈ ಮೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛೆ ಕುಲ್ ಕಾ ಹೂ, ಬಹುತ್ ಪಡಾ ಲಿಖಾ ಹೂ. ಯೇ ಸಬ್ ಭ್ರಮ ಕೆ ಅಂದರ್, ಗರ್ವ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭರೇ ರಹತೆ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಬೈಠೋ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಆಕೆ ಬೈಠೋ. तो ऐसे उल्टे वातावरण में क्यों आए वो यहां पर, क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी वो आते हैं. उसका कारण है कि उनके हृदय में अपार करुणा है. उनका हृदय जो है वो करुणा से भरा हुआ है. जब किस पर हम करुणा करते हैं ना, तो हम उसके दोष नहीं देखते. जैसे हमारा बालक है, समझो कम बुद्धि वाला है, बहुत मस्ती करने वाला है, कोई झूठ भी बोल लेता है, कभी किसी से कुछ पेंसिल चुरा भी लेता है, लेकिन फिर भी माता पिता का प्रेम जो होता है, करुणा होती है उसके ऊपर, फिर भी उसको गले लगाते हैं, थोड़ा सा डांट देते हैं उसको, लेकिन फिर भी चुम्मा लेते हैं उसका. प्रेम एक ऐसी वस्तु है ना, वो सभी दोषों को दुर्लक्ष करा देती है. दोष कितने होने पर भी उसको दुर्लक्ष होता है. इसलिए अगर वही दोष हमारे बच्चे में होंगे, फिर भी हम उस पर प्रेम करेंगे, और वो पड़ोसी के बच्चे में होंगे तो इतना गुस्सा करेंगे, इतना बार बार दोहराएंगे उसको, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस दिन तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया था. करुणा और प्रेम ऐसी एक वस्तु है जो कितने अनंत दोष भी रहेंगे ना, तो सब दुर्लक्ष्य कर देते हैं. नई नई शादी होती है ना, तो पत्नी को पति के अंदर और पति को पत्नी के अंदर सब सद्गुण ही दिखते हैं. हाँ, ऐसा लगता है, आपको अनुभव होगा ना, शायद शादी के पहले पहले दिनों में इतना अच्छा था, सभी सद्गुण संपन्न हमारी पत्नी थी और पति की पत्नी के लिए हमारे सद्गुण संपन्न पति भी थे, लेकिन एक साल बीत गया तो सद्गुण दूर रह गए, फिर दुर्गुण ऊपर आते हैं और वही दिखाई पड़ते हैं. और प्रेम विवाह हुआ था, 5 साल के बाद में केवल दुर्गुण दिखते हैं. सद्गुण बताने पर भी, याद करने पर भी समझ में नहीं आते. ये केवल प्रेम का अभाव और प्रेम का होना, ये दोनों कारण है. खाली आवाज को कम मत करो, ठीक है? तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कि हमारे दुनिया के अंदर अनंत दोष होने पर भी, और हमारे अंदर तो दुनिया में रहते हैं, इनके अंदर भी अनंत दोष होने पर भी भगवान यहां पर आते हैं. जैसे कोई स्वच्छ घर का आदमी दलदल में आ जाए, बोले कि पागल आदमी है क्या, इतना घर स्वच्छ घर में रहता है, साफ सुथरे घर में रहता है और कचरे के जगह पर क्यों आ रहा है? अगर वहां पर कोई उसका प्रेमी आदमी है तो उसको मिलने के लिए वो आएगा जरूर। प्रेम ऐसी मजबूत वस्तु है जो हर जीव उसको चाहता है और उस प्रेम के भगवान भंडार है पूरे, प्रेम करुणा दया हाँ कृपा, इसका भगवान अनंत भंडार है। और वो परम भंडार जो भगवान है वो हम आप सबके प्रेम के वश यहाँ पर आते हैं। और कारण क्या है इसका, प्रेम क्यों है उनको हमारे ऊपर, क्योंकि हम सब उनके बालक हैं। कोई बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं पारसी हूँ, कोई बोलेगा बुद्धिस्ट हूँ, कोई बोलेगा मुसलमान हूँ, कोई बोलेगा और कुछ हूँ। इतना सब होने पर भी मतलब हमने किसी ने लाल पहना है, किसी ने नीला पहना है, किसी ने हरा रंग का शर्ट पहना है, किसी ने पीला रंग का पहना है, लेकिन वो सब केवल वस्त्र है ऊपर का, हम अंदर कुछ और ही होते। और क्या हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास और बम्मई वांशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। कितने भी अलग अलग प्रकार के नाम और कलर हम लोग पहन लेंगे फिर भी हम लोग सब लोग उसी एक भगवान के बालक हैं। और हमारे में और वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर फर्क क्या है, जो भगवान के साथ में रहते हैं वो लोगों वो लोग भगवान को ही मानते हैं केवल, और भगवान के लिए ही जीते हैं, भगवान के सुख के लिए ही कार्य करते रहते हैं। और हम लोग भगवान को छोड़कर अलग से यहाँ पर अपना आनंद लेने के लिए यहाँ जीते हैं। और हम लोग जैसे जो भी नकली भक्त हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि अभी यहाँ का प्रेम छोड़कर उधर प्रेम करें खोया हुआ प्रेम प्राप्त करें वापस, ये सोचकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो नकली बनावट है ना बिगड़ी वो अभी तक नहीं जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ के लोग केवल भगवान के लिए जीते हैं और यहाँ के लोग भगवान को भूल कर अलग से आनंद लेना चाहते हैं, और उस आनंद के खोज में प्रयास में प्रयत्न में हमेशा ठोकरे खाते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, फिर भी उस खोज को छोड़ते नहीं है जो बेकार की खोज है। ऐसा माहौल है यहाँ पर, और भगवान जानते हैं कि ये मेरे सब मेरे बालक हैं, हाँ बिगड़े हुए बालक हैं, वो सब मुझे छोड़कर यहाँ पर खुशी को ढूंढ रहे हैं, हाँ जैसे कि नीम के पेड़ पर आम को ढूंढ रहे हैं, और एक दिशा में ढूंढे तो मालूम पड़ा कि यहाँ नहीं मिल रहा है आम, बोले ये पर नहीं वो शाखा पर होगा, थोड़ा ऊंचाई पर होगा, और ऊंचाई पर जाएगा तो भी क्या मिलेगा उनको, नीम ही मिलेगा कड़वा फल। तो आम का फल नीम के पेड़ पर नहीं मिलता है, कितना भी ढूंढोगे अपना, कितना भी कोशिश करोगे मेहनत करोगे, बोले 10 घंटा मेहनत करूंगा तो मिलेगा, 12 घंटा पर मिलेगा, 1 घंटे में क्या होता है, 12 घंटा मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, आप 1000 घंटा भी करेंगे ना तो नीम के पेड़ पर आम का मीठा फल नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह से इस दुनिया के माहौल में कितना भी आप खुशी ढूंढने का प्रयास करोगे यहाँ पर खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नीम का पेड़ है, यहाँ पर मीठा फल नहीं आता है। इसलिए हम लोग जहाँ पर जो नहीं मिल रहा है उसी के खोज में तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और खोजेंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है। और फिर ये सब करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर मर जाएंगे, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेंगे, फिर माता के गर्भ में जाएंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी पंछी बनेंगे, कभी मछली बनेंगे, फिर दोबारा आएंगे, और खोज जारी रहेगी। बोले पंछी बनकर खोज करके देखते हैं, आकाश में उड़ेंगे, हाँ बादलों में घूमेंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। फिर बोलेंगे जल में जाएंगे, मछली बनकर जल के अंदर क्या खुशी है वो देखेंगे, फिर जल के अंदर मछली बनेंगे वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। बोले जमीन पर हम लोग प्राणी बनकर आएंगे, हाँ सस्तन प्राणी, हाथी बकरी गाय भैंस, बड़े बड़े चार पैर के पानी प्राणी बनेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा। फिर बोले मनुष्य बनेंगे, सबसे बुद्धिमान प्राणी बनेंगे, और बुद्धि के द्वारा इस खुशी को ढूंढ के निकालेंगे, रिसर्च करेंगे, हाँ नया नया मोबाइल ढूंढ के निकालेंगे, 6-6 महीने में बदली करेंगे उसको नया नया टीवी ढूंढ के निकालेंगे, 6-6 महीने में बदली करेंगे, कभी फ्लैट स्क्रीन, कभी राउंड स्क्रीन, कभी कुछ स्क्रीन, कभी रिमोट से कंट्रोल करेंगे, हाँ वे एसी लगाएंगे, कभी और कुछ करेंगे, रिमोट, पहला विंडो था अभी स्प्लिट एसी हो गया, बाद में और कुछ आएगा पता नहीं है। मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे मनुष्य बनकर और उस खुशी को खींच कर लेके आएंगे। लेकिन ये सब वस्तुओं का नाम मैंने कुछ लिया अभी ना, मोबाइल टीवी ये सब, ये अनंत नंबर में अनंत मात्रा में विदेशों में उपलब्ध है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। कभी जाएंगे तो आपको दंग रह जाएंगे, आप क्या क्या उधर मशीन बनी हुई है खुशी प्राप्त करने के लिए, अलग अलग साधन बना के रखे हुए हैं। बटन दबाएगा दरवाजा खुलता है, बटन दबाया दरवाजा बंद हो जाता है, बटन दबाया तो खाना गर्म होता है, बटन दबाया ठंडा हो जाता है, जैसे मांगता है वैसे। हमारे पास बटाटा वड़ा गर्म करने का साधन नहीं है, लेकिन वहां पर निकला माइक्रोवेव, बटाटा अंदर रखा, बटाटा वड़ा को कोई काला नहीं हुआ, गोरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल गर्म होकर बाहर आया। इडली रखा तो इडली गर्म होकर वैसे के वैसे बाहर आ गई, एकदम मुंह जलेगा आपका, इतना नया टेक्नोलॉजी। हाँ, बाकी रोटी को तो तवे पर सेक सकते हैं गर्म करने के लिए दोबारा, लेकिन इडली को बटाटे वटे को कैसे कर सकते, समोसा को कैसे करेंगे, माइक्रोवेव निकला। इस प्रकार के अनंत व्यंजन वहां पर उपलब्ध हैं, फिर भी क्या हो रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन हो रहा है, हाँ सुसाइड हो रहे हैं, लोग खून कर रहे हैं लोगों का, डकैती हो रही है, ये सब सुखी समाज का लक्षण नहीं है। अगर ये सब साधन हमको खुशी देते, आनंद देते, तो कोई मर्डर नहीं करता, कोई डकैती नहीं करता, कोई लूटमार नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ, अभी परसों पेपर में एक न्यूज आया था, एक लड़के ने ऐसा स्कूल में आया और सब पे गोली चलाई और कुछ 22 लोग मर गए और 57 लोग जख्मी हो गए। और क्या कारण था, मतलब अकेला था बहुत, उसको बोर हो रहा था, अकेलेपन से उसको बहुत बोर हो गया था, इसलिए उसने अकेलेपन के विफलता के अंदर शूटिंग करके सब बच्चों को मार दिया, बहुत सारे टीचर्स को मार दिया, कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, बच्चों से किससे भी, ऐसा ही उसका दिमाग सटक गया। तो ये कोई सुखी समाज का लक्षण नहीं है। हमको लगता है भारत देखा दूसरे को, हमारे को वहाँ पर सुविधा जितनी है वो मिलेगी ना, इतनी खुशी होगी हमारे पास, ऐसा नहीं होता है। जितने साधन बढ़ते हैं उतनी खुशी हमसे दूर भागती है, क्योंकि खुशी जो है उन साधनों में नहीं है, खुशी आत्मा में है, खुशी हृदय में है, खुशी जहाँ पर भगवान है वहाँ पर है, और भगवान को हम भूल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कि यहाँ के लोग बेकार में मुझे छोड़कर सारे अन्य वस्तुओं में खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और वो उनको नहीं मिल रही है, और बार बार दुखी हो रही है, ठोकरें खा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में बार 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 दुख भोग रहे। तो इस भावना से करुणावश, करुणा के कारण भगवान वहां जन्म लेते, और एक बार नहीं, कभी मत्स्य रूप में आते हैं, कभी कछुआ बनकर आते हैं, कभी सुअर का भी जन्म लेते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, आधे पुरुष आधे सिंह, और कभी परशुराम बनकर आते हैं, कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी बलराम जी का अवतार लेते हैं, फिर जाके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। कितने विविध रूप में आते हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो सबको आनंद दूंगा, मैं सबको खुशी दूंगा, उसी रूप में नहीं आऊँगा, अलग अलग रूप में आऊँगा। कभी हम लोग कोट पहनते हैं, कभी सदरा पहनते हैं, कभी हाफ पैंट पहनते हैं, कभी कुछ पहनते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं हम लोग ना, अलग अलग स्थिति को देखते हुए। तो वो भगवान जो जिनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है वो यहाँ पर आते हैं हम सबको आकर्षित करने के लिए। यहाँ पर आकर वो कुछ लीला करते हैं, कुछ कार्य करते हैं ऐसे, जिससे केवल सुनने से और देखने से, अगर वो नहीं है तो हम लोग सुन रहे हैं, जब थे तभी वो लोग देख रहे थे उनको, वो देखने से उनको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। जब भगवान ने गिरिराज को उठाया, इतना अद्भुत कार्य किया उन्होंने, 7 साल का बालक के रूप में भगवान ने पूरा पहाड़ को उठा लिया, और वो ऐसा आजकल ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक ऐसा जोर से नहीं उठाया, एकदम आराम से उठाया उसको, एकदम प्रेम से, 7 दिन 7 रात। अभी के हमारे वेट लिफ्टर 7 सेकेंड भी उसको रखते नहीं ऊपर अपने, तुरंत फेंक देते हैं उसको नीचे, और गोल्ड मेडल मिलता है उनको, फिर रोते हैं हंसते हैं क्या क्या करते रहते हैं। 7 साल के बालक ने भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत 7 दिन और 7 रात उठा कर रखा। कितने घंटे हो गए देखो, 24 गुणले 7 कितने होते हैं, 168 घंटा। और फिर भी रखने का मूड में नहीं थे वो, तो बोले बारिश गिर गई, बंद हो गया, अभी फिर रख दिया उन्होंने नीचे। अरे सारे पृथ्वी को भी वो तैराते हैं आकाश में, वो पृथ्वी पर का एक पर्वत की क्या गोष्ट, क्या कथा है, ऐसे अद्भुत लीला करते हैं वो, माखन चुराते हैं, लोगों को बहुत खुशी होती, गोपियां कंप्लेंट करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे घर में माखन चोरने को आना चाहिए, इसलिए वो अच्छा अच्छा माखन बनाते हैं रोज, उसके से घर से मेरा माखन अच्छा होना चाहिए, ये सोचकर बनाते हैं कि आज मेरे घर में चुराने के लिए आए और कंप्लेंट करने के लिए हम उनके घर में जाए, फिर उनको ही देखते रहें, एक तरह कंप्लेंट करें, लेकिन इतनी खुशी हो रही है। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां पर आकर ऐसा कार्य करते हैं कि जो कार्य करने के लिए, कार्य करने से सबके हृदय में बड़ी खुशी पैदा होती है, बड़ा आनंद उत्पन्न होता है, और आज हम लोग नहीं देख पा रहे उनको, लेकिन आज उनको, उन्होंने जो किया था वो बोल रहे हैं, और वो बोलने से भी बोलने वाले को और सुनने वाले को सबको खुशी हो रही है, उसको कहते हैं लीला, उसको कार्य नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं लीला। लीला मतलब जो करने से, जो कार्य करने से सबको बड़ी खुशी होती है, किसी भी को सुनने से खुशी होती है, जिसके मन में द्वेष नहीं है उन सबको खुशी हो रही, उसको लीला कहते हैं। और ये कौन है, लीला पुरुषोत्तम, अनंत रूप भगवान के हैं, लेकिन उसमें प्रभु रामचंद्र, श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये तीन पूर्ण पुरुषोत्तम, मतलब पूर्ण पूर्ण अवतार है उनका, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक पत्नी को, एक पति को, एक भाई को, एक बेटे को, एक राजा को, सब रोल में हमको कैसे कैसे रहना चाहिए, वो उन्होंने दिखाया। फिर वो कृष्ण के रूप में आए, और कृष्ण के रूप में क्या दिखाया उन्होंने, पूर्ण पुरुषोत्तम, सभी प्रकार के संबंधों में उन्होंने परिपूर्णता दिखाई। इसका मतलब यह कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रभु रामचंद्र ने एक विवाह किया, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में कृष्ण भगवान ने करोड़ों विवाह किए। आप लोग जानते होंगे कि 16108 किए ना, तो करोड़ों कहां से आए, 16108 तो द्वारका में किए उन्होंने, लेकिन वृंदावन में एक राजा था बिमल राजा, उसकी कहानी मैंने आपको पहले बताई है, बहुत बड़ा वो राजा की कई करोड़ों कन्या थी, उन सारी कन्याओं के साथ में गोपाल के रूप में भगवान ने विवाह किया, और वो काम्यवन नाम के जगह पर रहे, और वहां पर उनके साथ में राजलीला किया करोड़ों पत्नियों के साथ में, तो उनके शरीर से जो दुर्द्रव निकला उससे विमल कुंड बना, और विमल कुंड आज भी वहां पर है, 84,000 तीर्थों का राजा है वो विमल कुंड। तो इस अवतार में करोड़ों विवाह किए उन्होंने, और ऐसे अनंत स्त्रियों से, गोपियों से प्रेम किया उन्होंने, पत्नी से बढ़कर, इसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुषोत्तम। और फिर आए वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर, और चैतन्य महाप्रभु का भी पूर्ण पुरुषोत्तम है वो, लेकिन उनका क्या स्वरूप है, वो प्रेम पुरुषोत्तम है। ये जो कृष्ण लीला के अंदर जो प्रेम उन्होंने विकट किया, वो प्रेम का जो सर्वोच्चम उच्चतम स्थिति है, उसका सागर थे वो, उसका भंडार थे वो, और वो जो प्रेम है उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम सबको बांटा, और उनको प्राप्त करने का मार्ग जो है एकदम आसान कर दिया उन्होंने। तो ये भगवान के प्रमुख अवतार हैं, जिनकी लीलाएं जो है वो इतने अद्भुत है कि जब तक हमारी मति शुद्ध नहीं होती है, तब तक वो उनकी लीलाओं को हम समझ भी सकते नहीं, क्योंकि अगर हमारी मति अशुद्ध है तो हम क्या बोलेंगे, अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं, 7 साल का बालक और पहाड़ को उठाया, अच्छा है बच्चों के लिए कहानी अच्छी है, बच्चों के लिए बहकाते रहो, हमको नहीं बताओ। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती ना, जब बुद्धि हमारी भ्रष्ट होती है अविज्ञा से और दुर्गुणों से, तो उसके अंदर श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो हमसे ओझल रहती है, हमसे छुपी रहती है, लेकिन जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब बुद्धि सच्चे ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो जाती है, तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा के कारण, श्रद्धा के साथ जब हम ये सुनते हैं, तो हमको भगवान की महानता सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, समझ सकते हैं उसको, हम हमारे पल्ले पड़ जाती है, उसको कहते हैं ना अकल में प्रकाश होता है, समझ सकते हैं उसको। और ऐसे कहा गया है कि ऐसे भगवान की दिव्य लीलाओं को समझते हुए सुनना और समझना उसको ठीक से अच्छी तरह से, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और किसी भी जीवन में बुद्धि शुद्ध करने का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, केवल मनुष्य के जीवन में बुद्धि को शुद्ध करने का फॉर्मूला अवेलेबल है, चाहे वो डॉक्टर की बुद्धि हो या चपरासी की बुद्धि हो या प्राइम मिनिस्टर की बुद्धि हो। तीनों बुद्धियां भ्रष्ट हो सकती है और तीनों बुद्धियां शुद्ध भी हो सकती है। उसको पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं है, ये मत समझना कि पढ़ने लिखने से बहुत ज़्यादा बुद्धि अच्छी होती है, ये मत समझना। पढ़ने लिखने के बाद भी पति पत्नी जोरदार मारामारी करते हैं घर में, डॉक्टर्स और वकील और अच्छे अच्छे लोग बॉक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से, वो बुद्धि का लक्षण नहीं है। बुद्धि पढ़ाई लिखने करने से नहीं आती है, बुद्धि सत्संग से आती है, बुद्धि भगवान का नाम का जप करने से आती है, उसे बुद्धि कहती है। जो बुद्धि आने के बाद में आदमी मैच्योर बनता है। और ऐसी बुद्धि शुद्ध करने का फॉर्मूला केवल मनुष्य जीवन में भगवान ने हमको दिया है, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जप करने से हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये सबसे बड़ी बुद्धि है। हाँ, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे शहर का, भारत देश का चपरासी भी जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और पुनर्जन्म होता है और भगवान है और हमारा रिश्ता क्या है उनके साथ में जानता है। वृंदावन जाएंगे रिक्शा वाला भी बोलेगा आपको रिक्शा को चलाते समय कि पुनर्जन्म होता है, भगवान अवतार लेते हैं, उनकी सब कुछ बताएंगे बात आपको, गीता के श्लोक सुनाएंगे आपको। वो बुद्धि का लक्षण है। हाँ, गरीब तो है वो, पढ़ा लिखा नहीं, इसको दुनिया के स्कूल में तो पांचवी स्कूल कक्षा में गया खाली, वो आगे नहीं गया, बहुत गरीब है, झोपड़ी में रहता है, रोज 100 रुपये कमाता है, दाल रोटी खाता है, फिर भी उसको शुद्ध हो गई बुद्धि प्राप्त है क्योंकि उसने भगवान का भजन किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे हमारे परम दयालु भगवान हमारा उद्धार करने के लिए बार बार दुनिया में जन्म लेते हैं। संभवामी युगे युगे, अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए, दुनिया के लोगों को आकर्षित करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, धर्मों को स्थापन करने के लिए भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूप में अलग अलग लीला करने के लिए आते रहते हैं। उसमें से ये पूर्ण पुरुषोत्तम का रूप है श्री कृष्ण भगवान। इनके अंदर 64 गुण हैं, इनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, पूर्ण शक्ति है उनके अंदर, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण यश है उनके अंदर, पूर्ण कीर्ति, हाँ पूर्ण फेमस भगवान है। और क्या है, पूर्ण सुंदरता हो गई, पूर्ण बल हो गया, पूर्ण यश हो गया, पूर्ण विरक्ति है उनके अंदर, पूर्ण धन है उनके अंदर, वेल्थ, और लास्ट क्या है, हाँ, और पूर्ण ज्ञान है उनके अंदर, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत वैराग्य, अनंत कीर्ति, अनंत सौंदर्य, अनंत धन। भगवान से अधिक धन किसके पास नहीं है, भगवान से अधिक सौंदर्यवान कोई नहीं है। सब सौंदर्य का, बल का, विरक्ति का, यश का, कीर्ति का भंडार है भगवान, अनंत अनंत अनंत। और वो भगवान इस दुनिया में तुम्हारे हमारे जैसे बालक बनकर, मतलब मनुष्य बनकर आ जाते हैं। अवजानंती माम मूढ़ाम मानुषिम तन्वाश्रितम, भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूं ना, तो इस दुनिया के जो मुझे छोड़कर यहां पर खुद सुख की खोज करने वाले लोग हैं ना, वो समझते हैं कि मैं उनके जैसा ही मानव हूं। मानुषिम तन्वाश्रितम, जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करता हूं तो मुझे यहां के मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग हैं, वो उनके जैसा ही समझते हैं। मेरे महानता को नहीं समझते वो, मैं कौन हूं, लेकिन भजन करने से समझ जाते हैं फिर बाद में। तो वो भगवान जो है, उनका कुल का इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। हाँ, सब लोग जगह रहना अच्छी तरह से, जन्माष्टमी बहुत बहुत पास में आ रही है, तो इस समय भगवान का कुल का परिचय होना बहुत जरूरी है। भगवान कौन है, भगवान जब, वो तो परम भगवान है। हाँ, भगवान अपने धाम में रहते हैं, जितना भी आध्यात्मिक धाम है, जितना भी भौतिक जगत है, जितना भी पृथ्वी है, जितना भी सूर्य है, जितना भी तारे नक्षत्र है, जितनी सूर्य मालाएं हैं, सब भगवान ने निर्माण किया है। ये सब उनका है, सारी भूमि गोपाल की है। सूर्य भगवान का सूर्य लोक, जितने भी स्वर्ग लोक हैं, पाताल लोक हैं, सूर्य मालाएं हैं, गैलेक्सी, कॉस्मॉस जितने भी है, सारा निर्माण उनका ही है। वो मालिक जो है, जैसे कभी कभी एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट ने इंडिया में आया था, हाँ, कितना करोड़ रुपए खर्च किया केवल रास्ता साफ करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए और कमांडो फोर्स सब के लिए खड़ा करने के लिए। अभी एक ओलंपिक का उद्घाटन हुआ तो $27 मिलियन खर्च किया गया एक दिन के अंदर, कई घंटे, कुछ घंटों के अंदर, क्या करके, फटाखा फोड़ के, दारू का बोलते ना आकाश में करते ना, फायरवर्क्स। 27 मिलियन मतलब हमने गिना उस दिन 135 करोड़ रुपया हो गया, उससे भी ज़्यादा 148 करोड़ रुपया हो गया एक्चुअली। कुछ घंटों में उन्होंने जला दिया उसको पूरा, और जो भी शोभा देखने को मिली वो केवल कुछ घंटे की थी। बाद में लोगों के पास वहाँ पानी पीने को नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, आगे क्या होगा मालूम नहीं है, ओलंपिक का उत्सव मना रहे हैं लेकिन देश की समस्याएं समाधान नहीं हो रही है। ये तो भगवान है स्वयं, इनके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर तुम्हारे बीच में जीने के लिए आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बोले आप चिंता मत करो, मैं अपनी व्यवस्था करूँगा। अपने धाम को साथ में लेके आते हैं, अपने धाम का ऐश्वर्य, अपना रहन सहन, अपना ढंग जो है अपने साथ में लेके आते हैं और अपने ठाट से रहते हैं। उनके लिए कोई सिक्योरिटी रखता नहीं है। आज का देश का नेता जो है वो कभी हिम्मत करेगा क्या अकेले जाके शॉपिंग करके आ सकता है क्या? वो बोले पैंट खरीदना है तो अकेले जाके पैंट खरीद के आ सकता है? वो नॉट पॉसिबल, उसको तुरंत दुश्मन उसके गोली मार के उड़ा देंगे तुरंत ही। जितना आदमी बड़ा, जितना फेमस, उतनी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है उसकी। लेकिन भगवान आते हैं तो आम दुनिया में खेलते हैं, वो आनंद लेते हैं सबके बीच में, कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं उनको, चक्र तो सेवा के रूप में साथ में घूमते हैं, उनको भगवान की जरूरत नहीं, उनकी भगवान उसकी रक्षा करते रहते हैं। तो ये जो भगवान है, ये जब अपना पवित्र स्थान छोड़कर यहाँ पर आते हैं तो कुछ कुल को चुनते हैं कि इस कुल में मैं जन्म लूंगा, ये मेरे इस अवतार के अंदर मेरे भाई बहन होंगे, मेरे माता पिता होंगे, मेरे सखा होंगे, मेरे सखी सोपती होंगे, ये मेरे गांव के लोग होंगे, ये सब ढूंढ चुनते हैं वो। और उनके अवतार के पहले वो सब लोग अवतार ले लेते हैं अलग अलग घर में। तो निमित्त क्या था? कंस का अत्याचार बढ़ गया था, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था, पृथ्वी रो रही थी, गाय का रूप धारण करके रो रही है भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर कि मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन मैं झूठ का भार नहीं सहन सकती हूँ, पाप का भार नहीं सहन सकती हूँ, इतनी सारी जनता मुझ पर रह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने पर्वत है मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन झूठ और पाप का बोझ मैं सहन नहीं सकती हूँ। और कंस के अत्याचार से मेरा ये पाप का और झूठ का बोझ इतना बढ़ गया है कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान के पास, विष्णु के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए अवतार लूंगा। और सारे देवताओं को आदेश देते हैं कि आप सब लोग जाओ और यदुकुल में अपना अपना जन्म ले लो और अपने सखाओं को और माता पिता को, राजा रानी को, सबको, गोपियों को बोलते हैं आप सब लोग जाके वृंदावन में जन्म ले लो, मैं कुछ साल वृंदावन में रहूंगा, वहां पर सबको दिव्य आनंद दूंगा, फिर मैं उसको वहां से चला जाऊंगा और आपको यदुकुल वालों को वहां मिलूंगा देवताओं को, और फिर राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दूंगा, वृंदावन में भी करूंगा और वृंदावन के बाहर जाकर भी करूंगा। तो उन्होंने यदुकुल को चुना, इसलिए भगवान का नाम क्या है? यादव। यादव यानी यदुकुल में जिनका जन्म हुआ है वो, और उनके परिवार के लोग, उनके नारायणी सेना, ये सब यादव है सब लोग। तो देवमीड़ नाम के एक राजा थे, बहुत पहले की बात है, भगवान के अवतार के 2 पीढ़ी के पहले की बात है, देवमीड़। हाँ, इसको लिखने की इच्छा लिख सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अद्भुत इन्फॉर्मेशन है। तो देवमीड़ राजा तो थे, बड़े सद्गुण संपन्न थे, बड़े लोगों को प्रिय थे, उनको कई पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी क्षत्रिय थी, एक पत्नी वैश्य थी। तो क्षत्रिय पत्नी से उनको पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था शूरसेन, और वैश्य पत्नी से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था परजन्य, और शूरसेन से उनको, शूरसेन को पुत्र हुआ उसका नाम हुआ वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। समझ में आपको आया? शूरसेन को एक मित्र था, उसका नाम था कुंती भोज, और शूरसेन को जब कन्या हुई तो मित्रता के कारण कुंती भोज को कोई पुत्र नहीं था, कन्या नहीं थी, तो कुंती भोज को उन्होंने वचन दिया कि जब भी मुझे कोई संतान होगी पहली तो मैं तुमको दे दूंगा। तो शूरसेन को पहली कन्या हुई, तुरंत उसने अपने मित्र को दे दिया कुंती भोज को, तो उसका नाम क्या हुआ, उस कन्या का नाम क्या हुआ, कुंती देवी। हाँ, क्योंकि वो कुंती भोज के पास रही, वहीं बड़ी हुई, वहीं पर उसका संस्कार हुआ। उसके बाद में वसुदेव का जन्म होता है और उसके बाद में और भी बहुत जन्म होते हैं। जैसे शिशुपाल की माता है, शिशुपाल की माता भी वसुदेव और कुंती की बहन है। शिशुपाल भी भगवान का चचेरे भाई है, आते बोलना आते भाऊ, कजिन ब्रदर, ऐसा ही डायनेस्टी है इनका। हाँ, तो सुभद्रा देवी जो हैं वो भी भगवान की सिस्टर हैं, मतलब वसुदेव की और एक बहन की लड़की है वो सुभद्रा देवी। ऐसा ही परिवार है मथुरा वाला। तो परजन्य के सॉरी देवमीड के पुत्र शूरसेन, शूरसेन की पुत्री कुंती, कुंती के भाई वसुदेव और उसकी और एक बहन शिशुपाल की माता, ऐसे परिवार हुआ। फिर वसुदेव की पत्नी और भी एक है रोहिणी, वो क्षत्रिय पत्नी है, उसके द्वारा उसको कौन जन्म हुआ, बलराम जी। और वसुदेव को देवकी के शादी होने के बाद, शादी जब हुई तब उसके पिताजी का नाम था देवक, देवक राजा, देवक राजा की कन्या का नाम था देवकी, और देवकी का हुआ वसुदेव के साथ में हुआ। और वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ तो आकाशवाणी हुई, जब कंस जो है वो उसको सारथी बनकर उसका शादी का जो रथ था बारात वो चला रहा था उसको, तो आकाशवाणी होती है देवताओं द्वारा कि हे मूर्ख कंस, जिसका रथ तो खींच रहा है उसके आठवें पुत्र से तेरा वध होने वाला है। तो उनको जेल में डालते हैं और छह बच्चे मारे जाते हैं, सातवां बच्चा बलराम जी आते हैं, तो उनका गर्भ जो है उसका हरण करके माया देवी उसको रोहिणी के गर्भ में डाल देती है। और यहाँ लगता है कि एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज, और आठवें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में आते हैं, चार भुजा वाली। ये कथा है मथुरा की, है ना। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था, हर्षण योग था, श्रावण वद्य अष्टमी का दिन था, ऐसे सब माहौल था बहुत सुंदर। जमुना जी में बाढ़ आ रही थी, बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो परजन्य का जो लाइन है, दूसरा भाई शूरसेन का परजन्य, वो था वैश्य, वैश्य माता से जन्म हुआ था उसका, तो वो वृंदावन चला गया। कहाँ गया वो, बृहदवन यानी कि महावन यानी कि गोकुल, जमुना जी के पार, मथुरा से जमुना के पार गया वो, और बृहदवन महावन गोकुल में अपना राज्य बसाया उसने। वो सद्गुणों का सागर था वो बहुत, वो लोगों को इतना प्रिय था, भगवान पर उसका इतना भक्ति था कि अपने सद्गुणों के द्वारा ही सबको प्रिय हो चुका था वो। प्रजा उस पर बहुत प्रेम करती थी। आजकल तो प्रजा भगवान, प्रजा राजा पर या मंत्रियों पर प्रेम करना है तो बाल हम लोग विचार भी कर सकते नहीं। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पंत प्रधान पर प्रेम करता है, उसका आदर करता है, उसकी पूजा करता है, ऐसा कोई है क्या, इम्पॉसिबल। लेकिन पुराने जमाने में सभी राजाओं पर, प्रभु रामचंद्र से लेकर अम्बरीश महाराज, पांडव, जितने भी राजा हुए हैं सभी राजा के ऊपर प्रजा इतना प्रेम करती थी। जब राम वनवास में गए तो क्या हुआ, सभी अयोध्यावासी छोड़ के चले गए अपना घर उनके पीछे पीछे, सब कुछ छोड़ के पैदल चल रहे उनके पीछे पीछे। भगवान को उनको ट्रिक करना पड़ा, भगवान रात को उठ के बीच में भाग गए, सुबह उठ के जनता परेशान हो गए भगवान कहाँ गए, इतना प्रेम करते थे वो राजा के ऊपर। वैसे राजा परजन्य थे, बहुत प्रेम करते लोग उनके ऊपर। तो उस परजन्य को पांच पुत्र हुए, उसका विवाह वैश्य श्री के साथ में हुआ। वैश्य मतलब जो गौ पालन करते हैं, खेती करते हैं, हाँ बिजनेस करते हैं, कोई उपज निकालते हैं जमीन से उसको बेचते हैं बार्टर सिस्टम में, उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य में कोई कहीं नीचा ऐसा नहीं है, कोई ऐसा जाति निचली नहीं उनकी, अपना अपना काम है सबका। क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण लोग मंत्र पूजा पाठ करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। वैश्य लोग बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, गोरक्षा करते हैं, और शूद्र कोई बेकार जाति नहीं है। शूद्र मतलब बाकी सब बचा हुआ काम वो करते हैं, मूची का काम, भंगी का काम और सुतार काम, पेंटर काम, जो भी बाकी जितने प्लम्बर जितना भी काम है समाज की सहायता के लिए, उनको भी श्रेष्ठ वैष्णव माना गया है। अगर वो भजन करते हैं भगवान का और प्लम्बर काम करते हैं तो भी वो वैष्णव है, उनका आदर करना चाहिए। जाति शूद्र किसकी रहती है? जो इसके नीचे रहते हैं, जो म्लेच्छ यवन और चांडाल। यवन यानी कौन? जो मांस खाते हैं। म्लेच्छ यानी कौन? जो सुअर भी खाते हैं, उसको म्लेच्छ कहते हैं। और चांडाल कौन? जो कुत्ता भी खाते हैं, उनको चांडाल कहते हैं। आजकल के लोग तो उसके भी नीचे हैं, हाँ, वो तो कॉकरोच और सांप और बिच्छू सब खाते हैं। वो जब वेदों का जब हुआ था ना क्लासिफिकेशन, तभी लोगों को आइडिया नहीं था कि ऐसे भी लोग रहेंगे, तो उन्होंने उनका कैटेगरी बनाया नहीं। आज नई नई कैटेगरी बन ले, ऊपर वाली नहीं नीचे वाली कैटेगरी। तो हम लोगों को इस कैटेगरी में आना नहीं चाहिए, प्लीज़ हमको ध्यान रखना है। हम लोग को वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के अंदर कम से कम शूद्र क्यों ना हो, लेकिन हमको वर्णाश्रम के अंदर शूद्र होना चाहिए कम से कम। भजन करना चाहिए भगवान का, क्योंकि काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भजन करने से बड़ा हो जाता है आदमी। भगवान की आंखों में उस कब आता है व्यक्ति? जब वो भजन करता है। तो वैसे परजन्य राजा वैश्य थे, उनको 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है उपनंद, नंबर 2 का नाम है अभिनंद या महानंद, तीसरे का नाम है नंद, चौथे का नाम है सनंदन या सुनंद, और 5वें का नाम है नंदन, सुनंदन चाचा कहते हैं। ये 5 पुत्र हुए उनको, और 5ों पुत्र भी उनके जैसे ही सद्गुण संपन्न थे। उनको एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम था और सारी प्रजा उन 5ों पर प्रेम किया करती थी। सबसे बड़े उपनंद बाबा थे, तो उपनंद बाबा जो थे उन पर अपने पिता का बड़ा प्रेम था, सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र थे वो। तो उन्होंने पूरा जो ब्रज का राज्य था वो उपनंद को सौंप दिया, उपनंद का राज्याभिषेक भी हुआ। लेकिन जो आजकल के ज़माने में देखने को मिलता नहीं है, वो ऐसी अद्भुत घटना वहाँ पर हुई। वो घटना ये हुई कि बड़ा पुत्र होने पर राज्य अधिकार से प्राप्त हुआ, उसको कायदे से प्राप्त हुआ, फिर भी उपनंद ने कहा कि हम सब में से सबसे अच्छे गुण जो हैं वो नंद में हैं, इसलिए नंद को राजा मैं बना दूंगा, मेरा पद खाली करके उसको राजा बना दूंगा। मतलब छोटे भाई को उन्होंने राजा बना दिया, अपने राजापन को त्याग दिया उसने। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये तो कहा लगता है कि बच्चों की कहानी है, कहानी में अच्छी लगती है, सच तो होना मुमकिन नहीं है ऐसा। लेकिन उपनंद ने अपने को कायदे से, प्रेम से, अधिकार से प्राप्त हुआ जो राज्य है वो स्वेच्छा से और प्रेम से अपने छोटे भाई को दिया, और सभी भाइयों ने उसको मंजूर किया, हाँ ये बात सही है कि नंद जो है हम सब में से सर्वश्रेष्ठ है और हम ये स्वीकार करते इस बात को, और नंद को राजा बना दिया। और वो नंद जो है उसका विवाह मेहरानो गांव में से एक लड़की जिसका नाम है यशोदा, उसका तो उसका विवाह हुआ। उसका मतलब क्या है? यशोदा जो हमेशा यश को देने वाली है, वो जहां भी रहेगी वहां यश प्राप्त होते रहेगा, वो जहां भी रहेगी वहां पर सफलता रहेगी, आनंद रहेगा, यश फैलता रहेगा। तो सब लोगों की इच्छा थी कि नंद का विवाह जो यशोदा के साथ में होना चाहिए, और वो सबकी इच्छा पूरी भी हुई और उनका विवाह हुआ। तो यशोदा जो है ये कृष्ण की चिरंतन माता है, चिरंतन माता। देवकी के गर्भ में से जन्म लेने के पश्चात भी भगवान कहाँ गए? यशोदा की गोद में गए, है ना? यशोदा की गोद में गए भगवान और जन्म लिया भगवान ने। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसी रात को वो चले गए यशोदा के घर में। और जो जैसे कृष्ण भगवान के 8 सखियां हैं ना, राधा रानी की 8 सखियां हैं, और राधा रानी के जो पिताजी हैं वो सब मिलकर 9 भाई हैं। एक राधा रानी के पिताजी और उनके 8 भाई, और उन 8 भाइयों को मिलकर एक एक कन्या हुई हर एक भाई को, और वो जो कन्याएं हैं वो राधा रानी की 8 सखियां हैं। 8 सखियां जो मेन हैं वो एक एक भाई से बनी हुई जन्म दी गई लड़कियां हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान के भी 8 सखा हैं, और वो कौन है? उपनंद के दो बच्चे हुए। उपनंद की विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम है प्रभावती। और प्रभावती का विशेषता यह थी कि प्रभावती अपने पति से 2 इंच लंबी थी, इसलिए उसका नाम था तुंगी। तुंगी यानी कि जो लंबी होती, हम बोलते हैं लंबुटांग, वैसे वो लंबी थी, पूरे ब्रज में फेमस थी वो, अपने पति से 2 इंच लंबी थी प्रभावती। और उनसे 2 पुत्र हुए, उसका एक का नाम है ऋषभ, दूसरे का नाम है देवप्रस्थ। देवप्रस्थ और ऋषभ, ये उपनंद के 2 बालक का नाम है। फिर आए महानंद या अभिनंद, उनका विवाह हुआ सुषमा देवी के साथ। और सुषमा देवी की विशेषता ये थी कि बहुत मोटी थी वो, और ब्रजवासी ने उनका नाम रखा था पीवरी, पीवरी। तो इस पीवरी जी के 2 बेटे हुए, उनका नाम है विशाल और तेजस्वी। और तीसरे भाई जो है वो है नंद महाराज। नंद महाराज का 2 पुत्र हुए, बलराम और कृष्ण। और चौथे नंबर के भाई जो है उनका नाम था सुनंद। यहाँ का बंद मत करा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही। तो सुनंद के पत्नी का नाम था कुबला देवी, कुबला देवी। और उनके 2 बच्चे हुए, उनका नाम था अर्जुन और अंशु। ये अर्जुन वो नहीं है जो पांडवों में से एक है, एक अर्जुन था पांडव, तीसरा भाई पांडवों का, और एक अर्जुन था भगवान कृष्ण के ताई जी का लड़का, मतलब चाची का लड़का, ताई नहीं। 2 ताई है भगवान को, और 2 ताई हैं और 2 चाची हैं। तो जो पहली चाची जो है उसका, उससे उसका नाम कुबला देवी है, और उसके बच्चों का नाम है अर्जुन और अंशु। और लास्ट जो चाचा है नंदन चाचा, उनके पत्नी का नाम है अतुला देवी, और इनके बालकों का नाम है भद्रसेन और स्तोक कृष्ण। इस तरह से कृष्ण बलराम 2, ऋषभ, देवप्रस्थ, विशाल, तेजस्वी, अर्जुन, अंशु, भद्रसेन और स्तोक कृष्ण, ये भगवान के 8 सखा हैं। और राजा रानी की जो सखियाँ जो हैं, उनकी एक विशेषता है कि वो एक एक गांव से हैं, हर एक सखी का एक एक गांव है, और अपने अपने गांव में रहा करती थी। लेकिन आदि पुराण में वर्णन आया है कि भगवान के 2 ताऊजी और 2 चाचाजी, ये भगवान के प्रेम की वजह से नंदगांव को छोड़कर कहीं नहीं गए, वहीं रह गए वो, वहीं पर उनका घर था आसपास में, और सब परिवार साथ में रहा करता था, इसलिए भगवान के जो 8 सखा हैं वो भी साथ में ही रहा करते थे, और ये हमेशा भगवान के साथ में खेला करते थे, माखन चोरी में, जमुना किनारे में विहार करने में, यमुना के अंदर विहार करने में, हर प्रकार के लीला में, हर प्रकार के गौचारण में, सब लीलाओं में ये भगवान के साथ में रहा करते थे। और ये भगवान की 8 सखा हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। और उसके बाद में ग्वाल बाल हैं जो ब्रज में रहा करते हैं, तो सभी देवता लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रज में जो गर्ग मुनि हैं वो भी आते हैं भगवान को, वसुदेव की तरफ से आते हैं। फिर सांदीपनी मुनि हैं, उनकी माता जो है वो कौन है, पार्वती का अवतार है वो, उनकी माता का नाम क्या है, पूर्णमासी देवी। वो पूर्णमासी देवी कौन है, एक्चुअली पार्वती देवी है वो। और शिवजी कौन है, शिवजी वहाँ पर्वत बनकर आते हैं, हाँ प्रभु जी, शिवजी जो है नंदीश्वर बनकर नंदगांव में रहने को आते हैं, और उनकी पत्नी जो है वो देवी बनकर, गोपी बनकर वहाँ पर आती है पूर्णमासी। और उनका पुत्र जो है सांदीपनी मुनि है, सांदीपनी मुनि कौन है, भगवान के गुरु बन जाते हो आगे जाकर। और सांदीपनी की एक लड़की है, उसका नाम नंदीमुखी है, और एक लड़का भी सांदीपनी मुनि को, उसका नाम है क्या बताओ, मधुमंगल, मोटा ब्राह्मण, भगवान का बहुत प्रिय सखा है वो। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को सहायता करने के लिए सभी देवता जो है अलग अलग जगह पर जन्म लेते हैं और भगवान की लीला को सहायता करते हैं। तो भगवान ने मथुरा में जन्म की लीला किया, 4 भुजा में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन देवकी को बहुत डर लगा था कि अरे कंस को अभी मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुमको मारने को आएगा, बहुत खूंखार है वो, पहले 6 बच्चों को मार चुका है। तो भगवान को किसका भय नहीं है, लेकिन माता के प्रेममयी भय का आदर रखने के लिए भगवान ने मान्य किया कि ठीक है मैं भी बालक बन के आऊँगा। और 2 भुजा वाले छोटे से रोते बालक बने वो, और जोर से रोए जैसे बालक रोते हैं, और 4 भुजा वाले रूप में उन्होंने आदेश दिया वसुदेव को कि मुझे तुरंत ले चलो अभी यहाँ से। और जब वो निकले तो क्या हुआ, इतना अनेक दरवाजे थे, सब दरवाजे में ताले लगे थे, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, श्रृंखला यानी कि चेन लगे हुए थे लोहे के भारी भारी, सब टूट गए अपने आप ही, इतने बड़े पहरेदार थे वहां पर, सब अपने आप सो गए। क्योंकि तो भगवान तो भगवान है, भगवान को कौन कैद में कौन रख सकता है। भगवान ने अपनी इच्छा से जेल में जन्म लिया। आप बोलेंगे भगवान कैसे भगवान है, वो जेल के अंदर बंद है, ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा से जेल के अंदर जन्म लिया और अपनी इच्छा से बाहर निकल गए दो मिनट के अंदर। सब पहरेदार सो गए, सब ताले टूट गए, सब चेन भी टूट गए। और जमुना जी को पार करते हुए बाढ़ आई, जमुना को पार करके भगवान पहुंच गए यशोदा के पास। वहां से कन्या को उठा के लेके आए, फिर वापस वो चेन लग गए, लॉक लग गया और पहरेदार भी उठ गए। इसको कहते हैं लीला। ऐसा कोई चोर कर सकता है क्या आज का? रात के 12 बजे बहुत वर्षा भी कराएगा, नदी को बाढ़ भी लाएगा और एक मंत्र बोलेगा तो सारे जेल भी टूट जाएंगे, ताले भी टूट जाएंगे, ऐसा होता है कभी? नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको लीला कहते हैं, करतूत नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लीला। लीला अद्भुत होती है। और भगवान ने ये सब किया, क्यों किया? ताकि हम सबका उद्धार हो जाए। और भगवान के जन्म की लीला ऐसी है कि भगवान के जन्म में थी अष्टमी, और अष्टमी के दिन चांद कैसा होता है बोलो, कैसा होता है? अष्टमी के दिन बोल रहा हूँ, पूर्णिमा का दिन मात्र बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ यस, आधा होता है, पौना होता है, पाव होता है, कितना होता है? आधा होता है अष्टमी के दिन। लेकिन चांद ने सोचा कि पूर्ण चंद्र भगवान ने अवतार लिया है तो मैं क्यों आधा रहूं, इसलिए अष्टमी होते हुए भी आधा चांद पूरा चांद हो गया। रात के समय कभी भी फूल खिलते क्या? देखा है आपने कभी कमल खिल रहे हैं, रोज गुलाब खिल रहे हैं, देखा आपने कभी? लेकिन भगवान ने जब बीच रात में जन्म लिया तो पहले आधा चांद पूरा हो गया और सब तालाब में, सब पेड़ों पर, सब बेलियों के ऊपर फूल खिलाए, तालाब में कमल खिल गए। तो केवल दिन में सूरज की बाद भी खुलते हो, सूरजमुखी भी खुल गया, सभी पेड़ों पर अनंत फल आ गए, सब जगह बहार छा गई, खुशियां छा गई। रात को पंछी गायन करने लगे, मोर, तोता, कोयल। आपको कोई फल गाता है, कोई पक्षी गाता है क्या? सब पक्षी सो जाते हैं। लेकिन भगवान का जन्म का स्वागत करने के लिए सभी पक्षियों ने सुंदर सुंदर गीत गाए, सभी फलों, सभी पेड़ों पर अच्छे अच्छे फल आए और खिल गए सब फूल, फूल और फल। सब तालाब में रोशनी हो गई, सभी जगह पर कमल खिल गए, सब जगह खुशबू फैल गई, हवा बहने लगी खुशबू के साथ लेकर। और उस स्थिति में भगवान जेल से कंस से निकलकर जमुना जी को पार करते हुए गोकुल पहुंच गए। उस समय गोकुल में यशोदा रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था और वो भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार जन्म देते ही सो गई, उसको ग्लानि हो गई, थक गई वो और सो गई। तो उसको पता चला नहीं कि कन्या को जन्म दिया है कि पुत्र को जन्म दिया है। और उस भ्रम का फायदा उठाते हुए, ये सब योग माया के कारण होता है, योग माया जो है भगवान की शक्ति है, उसके प्रभाव से सब कार्य होते हैं। फिर वो कन्या को उठा लिया उन्होंने, वहाँ कर पुत्र को रखा और वो चले गए। और यहाँ पर जब दूसरे दिन जग गए सब लोग तो देखा तो क्या देखा? यशोदा को पुत्र प्राप्ति हुई है। और उस पुत्र प्राप्ति के आनंद से, क्योंकि यशोदा माता जी को 85 साल तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, सब नंदगांव के लोग दुखी थे कि नंद बाबा इतने हमारे प्रिय हैं, यशोदा इतनी प्रिय हैं, लेकिन इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। तो नंदगांव छोड़कर वो गोकुल में आए थे। क्यों आए थे गोकुल में? क्योंकि उनको लगा था कि जमुना जी बहुत पवित्र हैं, जमुना जी के पास रहने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। इस नंदगांव छोड़कर वो जमुना जी के पास में गोकुल में आए थे। और जब ये पुत्र प्राप्ति हुई तो सब लोग ने बहुत खुशियाँ मनाई, उसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। तो इस तरह से भगवान का जन्म जो है हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत समर्पक है हमारे लिए। वो जन्म लेते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। वो कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरी लीलाएं जो है वो इतनी दिव्य है, अगर उसको वो समझ पाएगा तो वो समझने से ही मेरे पास आने को योग्य हो जाएगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे दिव्य कर्म को, दिव्य लीलाओं को और दिव्य जन्म के लीलाओं को समझ जाएगा, वो इस शरीर को छोड़ते हुए दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा, मेरे धाम में पहुँच जाएगा। तो भगवान ने केवल अपने आने से ही हम सबके जाने का योजना व्यवस्था पूरा कर दिया है। यहाँ पर जो हम लोग जन्म जन्मांतर से फंसे हुए हैं, यहाँ से मुक्त होकर जाने का, अपने धाम में भगवान के आनंदमय घर में जाने का, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई यातना नहीं, कोई वेदना नहीं, ऐसी जगह पर जाने का रास्ता भगवान ने केवल अपने आने से बना दिया पूरा। इसलिए हमको जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी हमारे भगवत धाम सुधारने का एक रास्ता है। उसको मनाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हर साल जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। क्या जरूरत है, मंदिर में तो मनता है ना, आप मंदिर में जाओ वहाँ पर मनाओ, नहीं। खास करके आप सब लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर भी, दुनिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव होता है। बॉम्बे हॉस्पिटल में विष्णु और लक्ष्मी जी का मूर्ति लगाया है, लेकिन जन्माष्टमी का उत्सव नहीं होता है वहाँ पर। एक पंडा को रखा है, वो दिन भर पूजा करते रहता है, उसका पगार मिलता है बस। भक्तिवेदांत में कोई पुजारी पगार से रखा नहीं गया है, सब माता लोग बाहर से आते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं, यहाँ पर फ्री में सेवा करते हैं, माला बनाते हैं, हाँ भोजन बनाते हैं भगवान को, टर्न बाय टर्न आते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं प्रेम से, तनख्वाह से नहीं। और हमारे स्टाफ लोग भी, नर्सिंग ट्यूटर और यहाँ के स्टाफ, वहाँ के स्टाफ आते हैं, शाम को भोग बनाते हैं, सब लोग आके नर्सिंग आरती गाते हैं, खीर बनाकर सब लोग खिलाते हैं। भक्ति इसको कहते हैं। भक्ति तनख्वाह देने से नहीं होती है भक्ति हृदय से होती है, और उस हृदय से होने वाले भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। किराए की और तनख्वाह वाली भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आप सबके आनंद के लिए, आप सबको ये मौका मिलता है कि आपके हृदय से, हृदय पूर्वक भक्ति कर सकते हैं आप, ये मौका देने के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं। उसमें अभिषेक करते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है कि अभिषेक करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पंचामृत से, दूध, दही, घी और क्या कहते हैं उसको, मधु और शक्कर का पानी और फलों के रस, इससे भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं, इससे भगवान को बड़ी खुशी होती है। उनके शरीर को धोया हुआ जो पंचामृत है सब हम लोग पीते हैं, और पंचामृत का पान करने से, अभिषेक का, चरणामृत का पान करने से जन्म जन्मांतर के पापों के बंधन टूट जाते हैं। और भगवान को जो आरती घुमाते हैं, और वो जब आरती घुमाने के बाद हम उसको ले ग्रहण करते हैं, और भगवान के ऊपर जल घुमाते हैं, और जल घुमाने के बाद सबको डालते हैं जल के ऊपर, ऐसे कहते हैं कि भगवान का अभिषेक करने के बाद में, आरती करने के बाद में जो जल को हम छिड़कते हैं वो भगवान के ऊपर घुमाया हुआ जल है, इसलिए हमारे सर पर जितने भी ग्रह तारे हमको पीड़ित करते रहते हैं उन सबका प्रभाव नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान का जो ग्रह है, कृष्ण ग्रह, वो सभी तारों के ऊपर का ग्रह है, वो उस पर घुमाया पानी जब आपके सर पर गिरेगा तो आपके सर पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान का प्रसाद, भगवान की आरती, हाँ ज्योति वाली आरती, भगवान को अर्पण किया हुआ जो पानी है या वस्त्र है या मिठाई है या कोई भोजन है जो भगवान को अर्पण किया गया है, उसको बड़े प्रेम से हमको लेना चाहिए, क्योंकि वो लेने से हमारे सारे जो ग्रह तारों का प्रभाव है हमारे ऊपर, अशुभ प्रभाव है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्त लोग जो हैं ग्रहों के प्रभाव के अंदर नहीं रहते हैं। भक्तों को केवल एक ग्रह का प्रभाव होता है, वह है कृष्ण ग्रह, तो कृष्ण ग्रह के प्रभाव से दूषित रहते हैं हमेशा, दूषित मतलब प्रभावित रहते हैं। उनको कोई ग्रह हुए की चिंता रहती नहीं है कि वास्तु में क्या हो रहा है, ये शनि क्या बोल रहा है, साढ़े साथी कभी आ रही है, शुक्र दशा कभी है, राहु दशा कभी है, केतु दशा कभी है, और ये क्या हो रहा है, फिर ये दशा में क्या होगा, वो दशा में ये शांति करो, वो दशा में वो पूजा करो, भक्त लोग आपको कभी भी ऐसा करते दिखाई नहीं पड़ेंगे। वास्तु के लिए घर में ऐसा दिशा अलग है, वो दिशा में दरवाजा है, वो दिशा में कुछ है, यहाँ पानी नहीं है तो वहाँ पर कुछ पानी का इंतजाम करो, वहाँ पर एक मोटा आदमी ला के रखो, हाँ लाफिंग मैन, ऐसा कोई उपाय भक्त लोग घर में अपने करते नहीं है, क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास होता है। जहाँ पर भगवान को विराजमान करते हैं, मंदिर बनाते हैं घर में, और जिस घर में भगवान को भोग लगाते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, उस घर में कोई ग्रह की पीड़ा, कोई शनि का दोष, कोई साढ़े साथी, कुछ नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ऐसा नहीं कि अगर भगवान का भक्त बनेगा आदमी तो अमीर बन जाएगा, लखपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने को अपनी भक्ति की जो शक्ति है, धन है, उसको बढ़ाना चाहिए। बाकी दुनिया का धन के क्या लाभ है, आज है तो कल नहीं है, और धन आने के बाद कौन सुखी हुआ है सब बताओ? धन आने पर भी सुखी नहीं है, धन नहीं पर भी सुखी नहीं है। यहाँ आदमी धन होने पर भी और धन नहीं होने पर भी दोनों तरह दुखी दुखी है। इसलिए हमको भगवान की भक्ति का धन जो है उसको बटोरने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के परिवार का आपको परिचय इसलिए दिया ताकि आपको भगवान पर प्रेम उत्पन्न हो जाए, आप समझ जाए कि भगवान की माता कौन है, पिता कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है, ताई कौन है, चाची कौन है, अष्ट सखा कौन है, किसके साथ वो बैठते हैं, किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ में आनंद लेते हैं, कौन से घर में रहते हैं, वहाँ से कहाँ जाते हैं, ये सब लीला कुछ सुनते हैं क्योंकि हमारे प्रिय व्यक्ति हैं। प्रिय व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं हम लोग, क्या पहनते हैं, क्या मुरली बजाते हैं, उसके बाद में क्या क्या होता है, ये सब सुनना चाहिए ताकि हमारे हृदय का मैल जो है वो नष्ट हो जाए और हमारे हृदय में खोया हुआ प्रेम भगवान का जागृत हो जाए और हम दोबारा भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य बने। इसलिए ये सब हमारा कोशिश है, संध्या जागृति, प्रभात जागृति, हाँ, डॉक्टरों का प्रोग्राम और नर्सों का प्रोग्राम और मैनेजमेंट का प्रोग्राम और जन्माष्टमी का उत्सव और इंडक्शन प्रोग्राम और ये सब जो होता है ना, ये कारण इसका एक ही है, ये न किरण प्रकार न मन कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से क्यों न हो भगवान का ऊपर हमारा मन हमेशा बना रहे। मन कृष्ण निवेशयेत, भगवान के ऊपर हमारा मन बना रहे, उनकी याद बनी रहे, उनका विचार बना रहे, उनकी ही याद आती रहे, इसलिए इतना सारा प्रयोजन है। कभी दोपहर को, कभी सुबह, कभी दोपहर को, कभी सुबह, क्यों करते प्रोग्राम? ताकि आप लोगों को भगवान की याद आती रहे, उनके विषय में चर्चा होती रहे। और जितनी भी आप सुनोगे सेम कहानी बार बार सुनोगे फिर भी आपको बोर नहीं होगा, लेकिन दुनियादारी के किसी आदमी का कहानी एक बार सुनेंगे अच्छा लगेगा, सेकंड टाइम सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे आप, क्योंकि बाकी लोगों की होती है करतूते और भगवान की होती है लीला, और लीला स्मरण और श्रवण करने से कभी भी बोर नहीं होता है। हम लोग कभी आज जो बताया आपको, पहले भी कई बार बताया है, कोई नई कथा नहीं है, बच्चा भगवान का, भारत का बच्चा जानता है सब ये कहानी, लेकिन बार बार हम दोहराते हैं फिर भी सुनने को आनंद आता है, क्योंकि वो भगवान की लीला है इसलिए सुनने को आनंद आता है, इसलिए बार बार सुनना भी चाहिए। हम लोग जो कथा करते हैं, यहाँ भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, कोई नई कथा नहीं करते हैं, वही कथा पुरानी जो किताब में लिखी हुई है उसी को बार बार दोहराते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन हमको कहने से और लोगों को सुनने से कभी बोर नहीं होता है, यही हमारे कार्यों से और भगवान की लीला में अंतर है। ये हमको समझ में आया तो हम लोग दुनिया के बंधन से छूट जाएंगे सब लोग। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।